Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmanand Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Swamiji ka jeevan ke vishay mein to humne to bhai suna hai, darshan nahi kiye hain. Maine bataya na कि जैसे वो कहते हैं ना, क्या सोमदत्त जी महाराज कहते हैं, स्वामी जी आपको देख करके ना मैं आपके रूप में अपना रूप देख लेता हूं। ये सोमदत्त जी की भाषा है कि आपके रूप में मैं अपने आप को देख लेता हूं। ऐसे सोमदत्त जी को देख करके ना महाराज जी को इनके रूप में देख लेता हूं, क्योंकि पिता है पुत्र पुत्री, तो पिता ही पुत्र के रूप में आता है, ठीक है ना। अब पुत्र का भी पुत्र वो पिता के रूप में हुआ, तो तारतम्य तो वही है, अंश तो वही है, तो इनके रूप में मैं उनको ही देख लेता हूं। तो एक कल्पना कर लेता हूं कि महाराज जी की भी स्थिति कुछ न कुछ अनुमान तो कर ले, बहुत ऊंची स्थिति थी, नहीं करता, क्योंकि देखो वृक्ष तो वृक्ष ही रहेगा, अभी कोई आया था बाप बाप ही रहता है, बेटा तो बेटा ही रहता है, तो उसको उसी जगह रहने देना। तो इनके रूप में ये लोग सुने हैं, पास रहे हैं, महाराज जी के सारे ग्रंथों का इन्होंने प्रकाशन आदि भी किया हुआ है, तो पूरा एकदम ओत प्रोत हो गया है, महाराज जी की एक एक बाणी पूरे हृदय में गूंजती रहती है। लेकिन फिर भी देखो महाराज जी के जीवन के विषय में, उन्होंने अपना जीवन जिया, गृहस्थ जीवन में भी गए, और उसमें गीता प्रेस की पुस्तक में उस समय ही गृहस्थ में एक तरह से रहते हुए, घर में रहते हुए भी उन्होंने भागवत की ऐसी टीका लिखी कि सही व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ गई। इसके पहले भी मुनिलाल की टीका थी, लेकिन उस टीका में भी थोड़ा सा क्या किया, परिष्कार करते हुए थोड़ा सा भावार्थ अनुवाद के रूप में नहीं, उसके एक भाव को व्यक्त करते हुए, तो बताओ वहीं लगता है कि महाराज जी को ज्ञान की कोई कमी तो थी नहीं, उस अवस्था में भी नहीं कमी थी, लेकिन फिर भी महाराज जी ने हम सबको एक शिक्षा देने के लिए निर्वहन किया कि भाई फिर भी आप वहां रहोगे ना। तो एक महाराज जी का, स्वामी त्यागमूर्ति जी का एक बहुत बढ़िया शेर सुनाते थे, माना कि दामन बचाते रहे हम, मगर सेक हरदम तो खाते रहे हम, आग के पास बैठोगे, माना कि आप अपने आंचल को बचाकर रखोगे, आग की चिंगारी इसको छुएगी नहीं, जलाएगी नहीं, लेकिन उस विषय के साथ रहोगे, पदार्थ के साथ रहोगे, तो भाई आंच तो आपको सहनी ही पड़ेगी। अब किसी किसी को आंच ही प्यारी लग जाए तो मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी वो आंच तो आंच ही है, तो महाराज जी ने उस आंच को ही पूरी तरह से क्या कर दिया, वो करके सन्यास आश्रम में चले गए, पूरी तरह से सन्यास आश्रम। उसमें बड़ा ऐसा सुना है कि परिवार के लोगों ने विरोध भी किया एक तरह से कि महाराज जी परिवार की सारी जिम्मेदारी पड़ी हुई है और आप एकदम वहां जा रहे हैं, ये सब क्या बात हो रही है, इनके साथ साथ हनुमान साहब पोद्दार या जय दयाल गोयनका के पास गए लोग, तो कहे देखो और कोई लिया होता सन्यास तो उसको मैं मना कर देता, लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह से पक गया है उसके लिए सन्यास लेने में कोई आपत्ति है ही नहीं, और उसके योग क्षेम का पालन तो कौन करता है, भगवान ही करते हैं, जो गीता जी का योग क्षेमम वहां में हम, जो नित्य उस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है उसके योग क्षेम के पालन की कोई चिंता तो करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो जिसने परीक्ष लोकान कर्म अच्युतान, कर्म से प्राप्त इस लोक की पूरी तरह से क्या कर दिया, परीक्षा कर लिया, और ये बुद्धि में निश्चय कर लिया कि संसार के किसी भी भोग में, किसी भी पदार्थ में सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो निर्वेदम आया, तो वह व्यक्ति उससे क्या कर लिया, वैराग्य ले लिया, और जिसको संसार के हर विषयों से वैराग्य हो गया, जरा सा भी संशय नहीं रह गया संसार के किसी विषय में सुख है, तो उसको संसार में ले कौन जा सकता है, और संसार में रहता हुआ भी वह संसार के काम का नहीं रहेगा। और फिर वह महाराज जी ने संन्यास जीवन धारण करके और फिर जो वेद वेदांत का प्रचार किया, पूरा विश्व ही उसकी छाया में आज पल पुस रहा है, हम सब एक पक्षी बनकर के उस डाली में क्या ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं। इतना कहते हुए हम अपनी बांगड़ी को विराम देते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।
बहुत ही सुंदर भाव हमारे सर्वेश चेतन जी महाराज ने रखे। महाराज श्री का अंतिम समय का कुछ याद दिलाया तो एक छोटा सा संस्मरण है। महाराज जी ने करवट बदली, पीड़ा थी तो आह प्रेम से, बहुत प्रेम से आह भी करते थे तो बहुत आराम से करते थे और बहुत मीठा तो आह निकली, तो कोई बगल में खड़ा था स्वामी, डॉक्टर स्वामी जी रहे, तो उन्होंने पूछा महाराज जी तकलीफ है, तो कह नहीं, तो कह आह निकली, तो कह मैं तो आह की आह का मजा ले रहा हूं, मैं तो आह का मजा ले रहा हूं आह बोल के आह का मजा लेना, तो ये उस समय बातें तो बहुत हैं। और जैसे चित्र चलता है वैसे चलता रहता है। अब उन्होंने शेर सुना दिया, शायद तो आ नहीं है कुछ न कुछ और जलने जलाने की बात ही थी, तो यहां कल ही अभी बात हो रही थी कि हम तो मसरूफ हुए इतना दीप जलाने में, घर ही जला बैठे दिवाली मनाने में तो हम महामंडलेश्वर जी से के चरणों में, बहुत ही मीठी बाड़ी, बहुत ही सारगर्भित, धीर गंभीर, मैं तो मुग्ध हो जाता हूं, मुग्ध रहता हूं आपके स्वरूप पे, आपकी वाणी पे। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आज आपको फिर से सुनने का अवसर मिल रहा है।
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेवमात्मा बुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुरो वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन के आवाज खोलें, शीर्ष स्वरूप परम सदगुरुदेव ब्रह्मलीन महाराज जी के चरणों में कोटि से वंदन। आज के आराध्य महोत्सव के आराध्य पुरुष ब्रह्मलीन महाराज जी के अव्यक्त स्वरूप को कोटि से वंदन। सभा की अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय महामृदेश्वर जी महाराज श्री, अत्यंत प्रेमास्पद ब्रह्मचारी सर्व चैतन्य जी महाराज, आदरणीय स्वामी प्रीतमानंद जी महाराज, मंच का बड़े ही कुशलता से जिनके द्वारा संचालन का आनंद हम लोग ले रहे हैं, श्री सोमदत्त जी द्विवेदी जी, ट्रस्ट मंडल के सभी पदाधिकारीगण, सदगुरु चरणानुरागी मातृशक्ति एवं सज्जनों, महान पुरुषों के द्वारा ब्रह्मलीन महाराज जी के पावन स्वरूप का चिंतन करते हुए हम अपना तन मन और वाणी को पवित्र कर रहे हैं। इसी प्रसंग में मम त्वेताम वाणीम गुण कथन पुण्येन भवत पुनामि, जिनका गुणगान करने से अपनी वाणी पवित्र हो जाए, इसी पवित्र भाव के साथ पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में दो शब्द समर्पित करना चाहेंगे। सज्जनों, मातृशक्ति, मुंडक उपनिषद में एक मंत्र आया है, यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते यांश्च कामान, तम तम लोकम जयते तांश्च कामान, तस्मादात्मज्ञम ही अर्चयेत भूति कामः। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, आत्मज्ञ पुरुष होते हैं, उनकी अभी अर्चना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। क्यों करें? सन 87 में महाराज श्री जी ब्रह्मलीन हुए और प्रतिवर्ष हम लोग महाराज जी का आराधन महोत्सव मनाते हैं। क्या इस आराधन महोत्सव के मनाने से महाराज श्री जी प्रसन्न होते होंगे? वो तो उस स्थिति में भी प्रसन्न है जब आपको अप्रसन्न मालूम पड़ते हो, व्यथित मालूम पड़ते हो, तब भी प्रसन्न है। अभी अभी सोमदत्त जी ने बड़ा सुंदर उनका संस्मरण सुनाया, उनकी जो आहा होती है उसमें भी जो आनंद देख रहे हैं वो हमारे आराधन महोत्सव की क्या अपेक्षा रखेंगे, उन्हें कोई भी अपेक्षा नहीं है। वो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम है, इनकी उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी सर्वेश जी बड़ी सुंदर बात सुना रहे थे, आचार्य शंकर ने भगवद गीता के भाष्य में एक पंक्ति लिखी है, सर्वत्र यव ही अध्यात्म शास्त्रे कर्तार्थानि लक्षणानि यानि साधनानि च भवन्ति तानि यत्न साध्यत्वात्। जहां जहां पर इन ज्ञानी महापुरुषों के जीवन के लक्षण, उनकी स्थिति, उनकी निष्ठा का वर्णन आता है, वो सिर्फ जानने के लिए नहीं आता है कि ज्ञानी पुरुष अहकाम होते हैं, निष्काम होते हैं, आप्त काम होते हैं, वो पूर्ण होते हैं, जानने के लिए नहीं आता है। जहां जहां उन संतों के जो लक्षण आते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देने के लिए आते हैं, किस प्रकार से इन महान पुरुषों ने अपना जीवन जिया है, हर परिस्थिति में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में। एक संसारी व्यक्ति कहीं प्रतिकूलता में घबरा जाता है तो अनुकूलता में फूल जाता है, प्राउड में, अभिमान में अपने आप को चूर कर देता है। लेकिन सारी परिस्थितियों में ज्ञानी महापुरुष किस प्रकार की समता रखते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता उनको छू नहीं पाती है। कितनी अच्छी बात सुन रहे थे कि जिनको प्रतिकूलता मालूम पड़ रही है लेकिन स्वयं को वहां भी प्रतिकूलता नहीं, उस आहा में भी एक आनंद की अभिव्यक्ति, आनंद का एक लाभ, आनंद ही वो भी एक आनंद है, आहा भी एक आनंद है। ऐसी जो स्थितियां बनती है, महान पुरुषों के प्रवचन से जितना हम लोग नहीं ले पाते हैं, मैं तो कहता हूं कि धन्य है वो लोग जिन्होंने साक्षात उनका जीवन दर्शन लिया है। जो पढ़कर के प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो दर्शन करके प्राप्त किया जाता है। कर्तार्थानि लक्षणानि यानि साधनानि च भवन्ति तानि, इन ज्ञानी महापुरुषों के जीवन के जो लक्षण है, हम साधकों के लिए वो लक्षण साधन बनकर के सामने आते हैं। उनकी जो स्थिति है उसका अनुसरण करने के लिए, उनके जीवन का अनुसरण करते हुए वो निष्ठा हमारे जीवन में कैसे बने, उसको देख देख करके हम लोग प्रयासरत होते हैं। इसलिए जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं उनकी अर्चना होनी चाहिए, उनकी वंदना होनी चाहिए, उनका आराधन होना चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए। यम यम लोक मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व काम ये तयाश्च कामान, क्योंकि उनका संकल्प अपना संकल्प नहीं है, वो तो साक्षात ईश्वर संकल्प हो जाता है। महापुरुष, ऐसे ब्रह्मज्ञ पुरुष सत्संकल्प होते हैं, इसलिए जिस प्रकार का संकल्प उनके मन से उठ जाता है, वो उठाते नहीं है, उठ जाता है, संकल्प करते नहीं है पर संकल्प हो जाता है। और जैसा जैसा संकल्प अपने या प्राय किसी के लिए भी हो जाए, वो जैसा संकल्प हुआ है वैसा का वैसा ही प्रेरित भी हो जाता है। हम लोग कितने संकल्प करते रहते हैं, कितने विकल्प उठते रहते हैं, कितने प्लानिंग होती रहती है, ऐसा हो जाए, शायद वैसा हो जाए, पर संभव नहीं है कि हो ही जाए। मगर ऐसे ज्ञानी पुरुषों का जो संकल्प होता है वो सत्य ही होता है। इसलिए जिनको संकल्प सिद्धि करवानी है अपने लिए या अन्य किसी के लिए, वो क्या करे, उन ज्ञानी पुरुषों की अर्चना करे, वंदना करे, उपासना करे, आराधना करे। सकामियों के लिए भी कहा गया है, जो चाह रहा है, इसका अर्थ हुआ कि जैसे भगवान से काम इच्छा करते हैं, कोई श्रीनाथ जी दौड़ करके जाते हैं किस लिए, श्रीनाथ जी के लिए, कोई खाटू श्याम जी दौड़ के जाते हैं खाटू श्याम जी के लिए, किसके लिए जा रहे हैं, उनसे अपने अभिष्ट की प्राप्ति करवाने के लिए। तो सकाम कर्म करने वाले, चाहने वालों को भी शास्त्र कहता है कि ऐसे आत्मज्ञ महान पुरुषों की आराधना करनी चाहिए, यदि कोई कामना भी है तो आपकी पूर्ति होगी। जो कोई उच्च कोटि के साधक हैं तो उनका जीवन दर्शन करके, अध्ययन करके, श्रवण करके और तदनुरूप अपनी स्थिति बनाने के लिए साधना में प्रवृत्त होगा, उसके लिए भी उन महान पुरुषों का जीवन अनुकरणीय होता है। तो चाहे सकाम हो और चाहे साधक हो, सबके लिए महान पुरुषों का जो जीवन होता है वो अपने लिए अनुकरणीय होता है। इसीलिए कि वो एक व्यक्ति नहीं रह जाते हैं। वेद का मंत्र प्रसिद्ध है, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। उन्होंने परमात्मा को अपने आत्मा के रूप में अनुभव किया है, और जिन्होंने परमात्मा को आत्मा के रूप में अनुभव किया हो, वो आत्मा परमात्मा का वहां भेद नहीं है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही है, परमात्मा स्वरूप ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, ब्रह्म को जानने वाले साक्षात ब्रह्म रूप में ही प्रतिष्ठित होते हैं, वो स्वयं ब्रह्म है, इसलिए वो सत्संकल्प है। जो परमात्मा के या ईश्वर के लक्षण शास्त्रों में आते हैं, आप देखोगे वो के वो सारे लक्षण इन ज्ञानी महापुरुषों के जीवन के आते हैं, वही लक्षण आएंगे। ज्ञानियों के जो लक्षण है और परमात्मा के जो लक्षण है समान ही होते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भेद नहीं होता। अनादि काल से अज्ञानी जीव जिस कर्म बंधन में पड़ करके अनंत बार जन्म ले चुके हैं और उस जन्म प्रवाह में निरंतर चल रहे हैं, वो ज्ञानी पुरुष उस प्रवाह को तोड़ करके साक्षात ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसलिए मंत्र आया, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, अध्यक्ष प्रवचन आपको सुनना है, पर एक बात मुझे ध्यान में आ रही है कि आखिर ये महान पुरुष इस प्रकार से वंदनीय क्यों हुए, ये स्थिति क्यों आई। इसलिए आई कि वो कर्म बंधन उनके सर्वथा निवृत्त हो चुके हैं, वो साक्षात ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस कार्य कारणात्मक परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर जितने भी कर्म हैं और जितने संशय हैं, जो अज्ञान ग्रंथि है, सबका नाश हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि, क्योंकि हृदय की अज्ञान जो ग्रंथि है उसका भेदन हो चुका है। द्वैत अद्वैत आदि संबंधित जितने भी संशय हैं सबकी समाप्ति हो चुकी है। यहां तक कि सारी दुनिया जिस कर्म बंधन में पड़ी हुई है, उस कर्म बंधन को, उस पास को काट करके उस तरह से निकल पड़े हैं जैसे उपनिषद ने उदाहरण दिया है। वामदेव ऋषि अपनी घोषणा करते हैं, शयन पक्षी जो होता है ना, बाज, अन्य जितने भी पक्षी होते हैं आप उसको पिंजरे में कैद कर सकते हैं, लेकिन बाज पक्षी को पिंजरे में कैद नहीं किया जा सकता है, उसको जाल में बद्ध करके नहीं रखा जा सकता है। ऐसी कुशलता प्राप्त होती है, जिस जाल में उसको कैद किया जाता है उस जाल को काट करके वो पक्षी उड़ जाता है, स्वतंत्र उड़ जाता है। तो जिस प्रकार से बाज पक्षी सारे बंधनों को काट करके स्वतंत्र उड़ जाता है, ये ज्ञानी महापुरुष संपूर्ण कर्म बंधनों को काट करके ब्रह्म स्वरूप से स्वतंत्र उड़ जाते हैं, इसलिए उनके लिए कोई बंधन नहीं रह जाता है। और ऐसे जो निर्बंधन पुरुष हैं, उन निर्बंधन पुरुष की जब हम उपासना करते हैं तो वो उपासना का लक्ष्य होता है उपासक उपास्य भाव को प्राप्त हो जाए। जो उपास्य है वो बंधन रहित स्थिति में है, वो मुक्त है, विनिर्मुक्त है, इसलिए साधक भी उसी विनिर्मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मुक्त ही तो मुक्त करा सकेंगे ना महाराज। संत कबीर कहते हैं, बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय। एक व्यक्ति इधर किसी कंभे के साथ बंधा हुआ हो और दूसरा किसी अन्य दूसरे कंभे के साथ में बंधा हुआ हो, एक बंधा हुआ व्यक्ति सामने वाले से पुकार करें कि आप मुझे खोल दीजिए, मैं बंधा हुआ हूं, वो सामने वाला कहेगा मैं तुझे क्या खोलूं, स्वयं ही बंधा पड़ा हूं। बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, तब कर सेवा निर्बंध की पल में देत छुड़ाई। जो खुद मुक्त है वही दूसरे को मुक्त अवस्था की अनुभूति करवा सकते हैं। इसलिए स्वयं मुक्त स्वरूप, सारे बंधनों से मुक्त साक्षात ब्रह्म स्वरूप महाराज श्री जी के पावन जीवन को हम स्मरण करते हुए आज उनके पावन चरणों में जो हमारे श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं, हम अपने ही पवित्रता के लिए, अपने ही स्थिति के लिए कर रहे हैं। ऐसे महाराज श्री जी के पावन अव्यक्त स्वरूप को कोटि से वंदन करते हुए, उनके चरणों में पुनः पुनः नमन करते हुए अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।
मैं प्रणाम करता हूं महामंडलेश्वर जी को। प्रेम कुटीर में आपका चल रहा है सत्संग, आपने भी यहां पे पधारने की कृपा की।
ओमेश्वर देव जी महाराज।
विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजान्तर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योज भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समष्टि के कण कण में विद्यमान, जैसा कि श्रुति का प्रमाण है, न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते। इस श्रुति के प्रमाण से समष्टि के कण कण में विद्यमान परम पूज्य महाराज श्री के श्री विग्रह में प्रणाम करते हुए, जिनके आराधन महोत्सव में सम्मिलित हुए उन महाराज श्री के श्री चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए, हमारी परंपरा में बड़े महापुरुषों का नाम लेने में थोड़ा संकोच होता है। आज के इस सभा के अध्यक्ष परम पूज्य आदर्श महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज, उनके पार्श्व में विराजमान आदर्श महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज, सर्वेश चैतन्य जी महाराज, प्रीतमानंद जी महाराज, उपस्थित संत वृंद, भक्त वृंद, मातृशक्ति, पूज्य महाराज श्री के इस आराधन महोत्सव में महाराज श्री का अपना जो स्वरूप था वह कैसा था, उस स्वरूप पर थोड़ा विचार करेंगे और साधकों के लिए उनके उस स्वरूप से क्या उपलब्धि हुई। हमारे यहां वेदांत प्रस्थान में प्रस्थानत्रयी को स्वीकार किया गया है, उस प्रस्थानत्रयी और अन्य भी ग्रंथों में भगवत्पाद शंकराचार्य जी के अभिप्राय को समझने वाला और स्पष्ट करने वाला सबसे प्रामाणिक ग्रंथ अगर माना जाता है तो वह आनंदगिरी टीका। जब कभी भी भाष्य की कोई पंक्ति सामने आती है तो यह होता है कि टीका लाओ, फिर उसका जो टीका में निर्णय होता है वह स्वीकार किया जाता है वेदांत दर्शन में, अद्वैत वेदांत दर्शन में। संपूर्ण सन्यासी परंपरा में ऐसी ही मान्यता है और हमने जैसा अब यह अंकुर तो वहीं का है, पूज्य महाराज श्री के आश्रम में ही यह अंकुर उत्पन्न हुआ, वहीं से पल्लवित होते हुए अब कहां कहां पहुंच रहा है यह भी उन्हीं की ही कृपा है। तो उनकी विलक्षणता साधकों के लिए क्या थी, श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय को संभवतः सभी ने सुना होगा, यहां के श्रोताओं ने तो जरूर सुना होगा और पढ़ा भी होगा, उसमें बिल्कुल छोटी सी बहुत सीधी सी सरल भाषा में भगवान शब्द की व्याख्या आई हुई है पूज्य महाराजा श्री के श्री मुखारविंद से। जितने साधक होंगे सबने पढ़ रखा होगा, संभवतः सबको वह व्याख्या सामने उपस्थित हो गई होगी, वह शब्द भी सामने आ गए होंगे। थोड़ा सा उनका निवेदन करेंगे। परम पूज्य आज के अध्यक्ष महोदय के श्री चरणारविंदों में प्रणाम करके क्षमा याचना करते हैं, कभी एक दो मिनट आगे पीछे हो जाए तो क्षमा करेंगे। और कृपा करके उन्होंने अपने समय में से हमें दिया है, ये तो उनकी कृपा है। कल हमारे मन में आया कि महाराज श्री का आराधन महोत्सव हो रहा है, अब जीवन ही जन्म ही उसी आश्रम का है, उसी स्थान का है, तो कृतज्ञता की दृष्टि से फिर मन में तो थोड़ा होना चाहिए ना, इसलिए फिर हमने कहा कि चलो जाते। तो पूरे पूज्य महाराज श्री ने भगवान शब्द के अर्थ को जब निरूपण करना प्रारंभ किया तो भा भवनम भा भरणम गा गमना गमन और वा वेदना वेदन आ अध्यारोपापवाद और ना नेति नेति, सबको याद होगा, जितने साधक बैठे होंगे सबको याद होगा। ऐसा लगता है कि बहुत सरल बिल्कुल लोक प्रचलित राष्ट्रभाषा में भगवान का शब्द का भगवान इस शब्द का महाराज श्री ने व्याख्यान कर दिया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पर हमारे दशम पीठाधीश्वर कैलाश ब्रह्म विद्यापीठ के दशम पीठाधीश्वर जी कहा करते थे कि यह जो भगवतपाद शंकराचार्य जी का भाष्य है देखने में तो लगता है कि बहुत सहज है बहुत सरल है, पर भाष्यम प्रसन्न गंभीरम, ये लगता तो है कि बहुत सरल है बहुत सरल है, पर जब इसमें प्रवेश करो तो मालूम पड़ता है कि कितना गहरा है कितना गहरा है।